ईश्वर ने हम लोगों को बुद्धि दी है, विवेक दिया है और शक्ति दी है, तो उसका प्रयोग ठीक करना चाहिए। हमारे को दी हुई जो शक्ति यानी सामर्थ्य और जो ज्ञान, इसका हम ठीक उपयोग करें तो बस हमारा कल्याण हो सकता है। इससे अधिक की भगवान की भी आशा भी नहीं करते और हमारे ये बात लागू भी नहीं पड़ती। ईश्वर ने हमारे को जितनी बुद्धि दी है उससे और अधिक हम कहां से लाएं, जितनी हमारे को सामर्थ्य दी उससे और अधिक हम कहां से लाएं। तो भगवान ने जो भी तू शक्ति और ज्ञान हमको दिया है उतने से हमारा कल्याण निश्चय हो सकता है। हम लोग जितने यहाँ हैं, हम लोगों में कोई मूर्ख से भी मूर्ख है तो उसका भी शीघ्र कल्याण हो सकता है, और पापी से पापी है उसका भी कल्याण हो सकता है। इसके लिए हमारे को कोई चिंता करने की, शोक करने की जरूरत नहीं है, साधन करना चाहिए। मनुष्य को अपना समय और बल और बुद्धि इनको एक प्रकार से ठीक काम में लाना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो सके। जो आदमी नौकरी करता है या अपने निजी का काम करता है या किसी ऑफिस के बीच में बुनियन है या कोई दलाल है या कहीं भी किसी भी प्रकार का काम करता है, तो वही बुद्धिमान मनुष्य है कि वहां अपनी आवश्यकता पैदा कर देनी चाहिए। कोई व्याख्यान दाता है तो उसको अपनी ये आवश्यकता पैदा कर देनी चाहिए कि सुनने वाले उनका व्याख्यान सुनना चाहता है। एक है तो चाहता है, बहुत हो तो चाहते ही, तो सुनने वाले जो बहुत समूह है वे उसका व्याख्यान सुनना चाहते हैं, तो उसने आवश्यकता पैदा कर दी। स्त्रियोच्य पुरुष हो, जिसने कहीं अपनी आवश्यकता पैदा नहीं की, उसका जो एक प्रकार से वो समय जो है, जीवन जो है, वो भार रूप है। कोई विधवा स्त्री है, अपने पीर में रहती है, ससुराल में रहती है, किंतु उन लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसका वो जीवन ऐसे व्यर्थ है। और आवश्यकता पैदा करने पर पीर वाले चाहते कि यहां रहे, ससुराल वाले चाहते यहां रहे, तो उसकी वो बुद्धिमत्ता है। ऐसे कोई भी पुरुष अपने यहाँ नौकरी करता है और उसने अपनी आवश्यकता पैदा कर दी, और दूसरे लोग चाहते हैं कि भाई तुम यहाँ क्यों, हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको काम देते हैं, और जहाँ वो रहता है वो तो नहीं, तुम यहाँ ही रहो, तो उसने अपनी आवश्यकता पैदा कर दी। तो यजमान समझो, चाहे पुरोहित समझो, और चाहे दुकानदार समझो, और चाहे नौकर समझो, और चाहे मालिक समझो, एक व्यापक बात है कि हर एक मनुष्य को, हर एक स्त्री को अपनी आवश्यकता पैदा कर देनी चाहिए कि सब उसको चाहने लगे, तो उसने अपना जीवन सार्थक बना लिया, जब अपनी आवश्यकता पैदा कर दी। तो हम लोगों को तो अपनी ऐसी आवश्यकता पैदा कर देनी चाहिए कि दुनिया में सभी लोग हमारे को चाहो, वो तो कहे यहाँ रहो, वो कहे वहां यहाँ रहो, तो उसकी विशेष अपना बुद्धिमत्ता है। हम आवश्यकता पैदा सब जगह कर दे तो भगवान भी चाहेंगे भी हमारे यहाँ रहे, देवता भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ रहे, मनुष्य भी चाहेंगे, सभी चाहेंगे। और जिसकी कहीं आवश्यकता नहीं है उसका समय एक प्रकार से व्यर्थ है। आजकल की शिक्षा के बीच में उल्टी शिक्षा दी जाती है, जहां मजदूर काम करते हैं उनको भी उल्टी शिक्षा दी जाती है कि तुम जो है सो कम समय में काम करो, यानी काम में थोड़ा समय लगाओ, बस 8 घंटा से अधिक मत लगाओ। और वो 8 घंटा में जो एक प्रकार से 12 घंटे का काम कर सकता है चाहे तो, और 4 घंटे का भी कर सकता है, तो वो एक प्रकार से आपने दिल लगाकर काम नहीं करता, उसने अपनी आवश्यकता पैदा नहीं की, इसलिए उसकी मूर्खता है। कौन सा जल्दी बीजा होगा, रहेगा तो भी उसका रहना भी एक प्रकार से बाहर रूप ही है, बाहर रूप होकर के रहना भी उसके लिए लज्जा की बात है। तो जितना हमको समय लगाना चाहिए उतना हम समय नहीं देते, तो हम समय की चोरी करते, और जितनी हमारी शक्ति है उतनी शक्ति लगा करके हम काम नहीं करते हैं, तो हम शक्ति की चोरी करते हैं, अपने बल की चोरी करते हैं। और जितनी बुद्धि लगानी चाहिए उतनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, तो हम बुद्धि की चोरी करते हैं। तो चोर की कहीं आवश्यकता नहीं रहती, सब चाहते हैं कि भी हमारे यहां कोई चोर होकर के नहीं रहते, चोर की कहीं आवश्यकता नहीं, न भगवान के घरे आवश्यकता है न यहां आवश्यकता है। उसके घर वाले जो माता पिता भाई बंधु वे भी तंग आ जाते हैं, दूसरों की तो बात ही क्या है। तो समय का उपयोग ठीक होना चाहिए, 24 घंटे का समय है उसका ठीक उपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक समय समझो कि परमात्मा की प्राप्ति के काम में लगाना चाहिए। और वो परमात्मा की प्राप्ति का ये मतलब नहीं कि एकांत में जाकर के तुम बैठ जाओ आपने 10 घंटा 12 घंटा, नहीं, प्रसन्नता के साथ हर वक्त जो कुछ तुम काम करते हो, तुम्हारा घर की दुकान है और तुम गल्ले की दुकान पर काम करते हो तो गल्ले का काम करो, कपड़े की दुकान पर कपड़े का काम करो, नौकरी करते हो तो किसी को नौकरी करो, उसके वास्ते कोई बात नहीं, किंतु जिस काम को तुम करते हो उसको साधन बना, उसको साधन का रूप दे, वो तुम्हारा काम परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन जाए। स्वार्थ का त्याग करके जो तत्परता के साथ में काम करता है वो कार्य उसको मुक्ति के देने वाला बन जाता है। संसार के विषय भोग जो हैं, ये सब मुक्ति के देने वाले बन जाते हैं, यदि मनुष्य उसको स्वार्थ का त्याग करके संसार के विषयों का उपभोग करे। कोई आदमी किसी को ताड़ना करता है वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, या किसी प्रकार से कि समझो ताड़ना करता है, किंतु ताड़ना करने वाले की नीयत बहुत अच्छी है, उसके हित के लिए है, तो वो ताड़ना करने का जो काम है वो भी मुक्ति के देने वाला बन जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है और वरण के ऊपर अपने कीड़ा लगाता है, उसको काटता है, अच्छी नीयत से थी तो उसे मवाद निकल जाती है और वो जख्म जो सो जल्दी आराम हो जाती है, तो डॉक्टर ने अच्छा काम किया। इसी तरह से चाहे कोई आदमी अपना लड़का है और उदंडता करता है और उसके हम दो थप्पड़ लगा दिए, इसलिए उसके हित के लिए कि इसका ये जो स्वभाव है इसका सुधार हो जाए, उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए, तो उसे मारने में हमारे कोई पाप नहीं लगे। यदि कोई नौकर दिन में सोता है या काम के बीच में गाफलाइट करता है तो उसको बुलाकर हम कह दें कि भाई ऐसा तुम जो करते हो ना ये ठीक नहीं, इसका सुधार कर दो, नहीं तो ये हमारे नहीं पुसाएगा। इस प्रकार से ताड़ना देने से वो अपना सुधार कर लेता है, तो ताड़ देना ताड़ना करना उसके हित की बात। हम इस उद्देश्य से ताड़ना करते हैं कि जहां कहीं जाएगा तो वहां इसका आदर नहीं होगा। तो जिस प्रकार से थी ताड़ना करने पर भी यदि इसका सुधार हो जाए तो बहुत उत्तम बात है, परंतु इसका सुधार करना है अच्छी रीत से थी यदि वाणी से ताड़ना की जावे या उसको नौकरी से खर्च कर दिया जावे कि जब इसको खर्च कर देंगे तो आगे के लिए दूसरे कहीं नौकरी करेगा तो इसका स्वभाव सुधर जाएगा। तो हमारा भाव अच्छा है, इसलिए हमारा जो साधना का काम है वो भी हमारे लिए कल्याण करने वाला है। क्यों? हम निष्काम भाव से उसके हित के लिए कर रहे हैं। दान देना जैसे मुक्ति करने वाला हो जाता है निष्काम भाव से किया हुआ दान, इसी प्रकार से दान लेना भी मुक्ति को देने वाला बन जाता है। जैसे एक भाई ब्राह्मण को दुखी समझ करके उसको दान देता है, इसलिए देता है कि इसके घर में बहुत से खाने वाले हैं, भोजन पाने वाले, और ये गरीब आदमी है, भला आदमी है, विद्वान है, पंडित है, सब कुछ है, किंतु घर में खाने के लिए नहीं है। और वो भेजता है कि महाराज ये हम आपके 10 दिन के लिए ये चीनी घी आटा ये सब दे रहे। वो कहता है कि नहीं, एक प्रकार से हम परिश्रम करके ही अपना गुजारा करना चाहते हैं, इस प्रकार से मुफ्त में लेकर गुजारा करना नहीं चाहते। हम देखते हैं कि सद्गुणी सदाचारी अच्छा ब्राह्मण है, विनय ब्राह्मण है, विद्वान है, इसको देना जो जरूरी है, और अभाव है सबसे बढ़कर। हम कहते हैं कि महाराज आपको लेना ही होगा। हमने बहुत अनुनय विनय किया, आखिर में उन्होंने इनकार कर दिया तो हम रोने लग गए। तो हमारे दुख को देख करके उसने कहा कि ठीक है, घी चीनी की तो जरूरत नहीं है, थोड़ा आपका आटा रख लेते हैं। ठीक है, हमारे अभाव है ये बात तो ठीक है, किंतु हमारे अभाव की पूर्ति हम किससे सहायता लेकर करना नहीं चाहते, हम अपना परिश्रम करके ही उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, किंतु आप ले आए तो आपका मान रखने के लिए हम आज भर का घर में 10 प्राणी हैं, तो ये आपका 5 सिर आटा रख, 5 सिर आटा हमने उसका रख लिया। फिर उसने बहुत कोशिश करी कि नहीं, आटा आटा तो आप सभी रख लो, थोड़ा घी भी रख लो। बोले घी की क्या हो सकता है, आटा खाने से आदमी मरता नहीं, पेड़ तो चली जाता है, फिर चीनी और घी की क्या हो सकता है, कोई मिठाई बना करके कोई मालपुआ बना करना है, अपना पेट ही तो भरना है। बहुत कहने के ऊपर वो जो 15 सिर आटा लिया था सबका सब वो छोड़ करके चला गया। तो ये एक प्रकार से थी, हमारा कोई लोभ नहीं, लेने वाले का कोई लोभ नहीं, वो नहीं लेने से वो रोता है, दुखित होता है, और आवश्यकता है घर के बीच के वहां कोई सरपर नहीं है खाने पीने का कोई चीज का, तो हम उसका वो अनाज रख दिया, चीनी और घी वापिस कर दिया। तो हम ग्रहण करके के भी हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है, क्योंकि शास्त्र के अनुकूल ब्राह्मण दान ले सकता है, तो ब्राह्मण की हिस्से से दान लेना कोई बड़ी बात नहीं, और इस प्रकार से घर पर आकर प्राप्त हो जाए तो वो अमृत के समान है, इस न्याय से भी कोई बुरी बात नहीं है। किंतु हमारे भीतर में त्याग है कि इतना होने पर और ब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मण देवता वो लेना नहीं चाहता। हम तो भैंस हैं, किंतु समझ लो कि हमारे जीवन कोई ब्राह्मण हुए तो वो दान लेकर के भी मुक्त हो जाता है, जैसे कि निष्काम भाव से, और दाता भी निष्काम भाव से देता है तो दाता की भी मुक्ति हो जाती है, और दान देने वाले की और लेने वाले की दोनों की मुक्ति हो जाती है यदि दोनों निष्कामी हैं। लेने वाला यदि सहकामी है तो लेने वाले की मुक्ति नहीं होगी, और देने वाला दाता जो है वो यदि सहकाम भाव से देता है कि भैया आपने विद्या विनय पूर्ण और अच्छे सदाचारी ब्राह्मण है, इसको देने से बहुत लाभ है, बड़ा महात्म है,
हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तो स्वर्ग की प्राप्ति के उद्देश्य से हम दान दे रहे हैं तो उसका फल स्वर्ग की प्राप्ति है, मुक्ति नहीं। उसे काम भाव से दे रहे, दाता का यदि सहकाम भाव है तो दाता की मुक्ति नहीं हो सकती, और दान लेने वाले का यदि सहकाम भाव है स्वार्थ बुद्धि से थी, लोभ की बुद्धि से वो लेता है तो उसका कल्याण नहीं होता। लेने वाला इस दृष्टि से लेता है कि बिना लिए इसको दुख होगा, तो केवल मात्र उसकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचे तो वो भी एक प्रकार से उसका उपकार ही करता है, और देने वाला भी निष्काम भाव से देता है तो उसका कल्याण हो जाता है। गीता में बताया देवता तो मनुष्यों का हित चाहे, मनुष्य देवताओं का हित चाहे, तो एक दूसरे का हित चाहते हुए परम जो श्रेय मुक्ति कल्याण उसको दोनों प्राप्त हो जाते। तो जिस प्रकार से थी देवताओं का यजन करने वाला यजमान मुक्त हो जाता है, देवता अपने कर्तव्य का पालन करता है, देवता भी सुख कल्याण को प्राप्त हो जाता है। परस्पर एक दूसरे का हित करने से, एक दूसरे के हित में रत होने से दोनों का कल्याण हो जाता है। यही बात सब प्रगटा दो, हम आपका उपकार करें, स्वार्थ का त्याग करके जिस किस प्रकार से आपका उपकार हो चेष्टा करें और आप हमारा उपकार करें, तो इस प्रकार के परस्पर के उपकार से दोनों का ही कल्याण हो जाता है। इस विद्या के सीखने की आवश्यकता है।